धवला पुस्तक दसवी लेक्चर नंबर एक ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो हरिहंतां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सौवसाहुं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिनेन मिहुं वेयण महाहि आरं विविहि आरं परुवेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इस षटखंडागम का ये चौथा वेदना खंड चल रहा है। ये नवी पुस्तक में भी वेदना खंड ही था, परंतु वहाँ कृति अनुयोग द्वार था। यह चौथे वेदना खंड का ये वेदना अनुयोग द्वार यहाँ से अपनी प्रारंभ अपना हो रहा है। अभी हमने जो मंगलाचरण गाया है उसका अर्थ देखते हैं। कम्मठ जनीय वेयण, आठ कर्मों के निमित्त से उत्पन्न हुई वेदना रूपी समुद्र से पार हुए जिनों को, यानी ये तो यह कहीं कर्मों को भी वेदना कह रहे हैं और यहाँ तो कर्मों के निमित्त से जीव के परिणाम होते हैं उनको यहाँ वेदना कहा है। क्या कहते हैं, आठ कर्मों के निमित्त से उत्पन्न हुई वेदना रूपी समुद्र से पार हुए जिनों को नमस्कार करके, यानी जिनों के आठों ही कर्मों का क्षय हो चुका है, सिद्ध भगवान की बात है यहाँ पर, जो विविध अधिकारों में विभक्त है, ऐसे वेदना नामक महाधिकार के हम प्ररूपना करते हैं। इसका अर्थ है यहाँ वेदना नामक महाधिकार है और वो उसके अनेक अधिकार है, विविध अधिकार है, ये यहाँ बताने जा रहे हैं। अब वेदना अधिकार का प्रकरण है, यानी अभी ये जो वेदना अनुयोग द्वार है उसमें और जिसको हम अवांतर अधिकार कहेंगे उसमें कौन कौन से चैप्टर विषय आने वाले हैं तो उसके बात करते हैं। यहाँ पर ये 16 अनुयोग द्वार है, वेदना जो है उसके 16 अनुयोग द्वार है। हाँ, वो पहले हम प्रस्तावना भी पढ़ेंगे। पेज नंबर, हाँ हाँ, सूत्र रहिए, सॉरी मैं नीचे गई, मैं सूत्र के अर्थ में चली गई। सूत्र को पढ़ना है पहले। वेदनाति तथ्य इमानी वेयणाए सोलस अनुयोगद्वाराणी नादव्वाणी भवन्ति। वेदना निखेवे वेदना नय विभासनदाये वेदना नाम विहाणे वेदना दव्व विहाणे वेदना खित्त विहाणे वेदना काल विहाणे वेदना भाव विहाणे वेदना पच्चय विहाणे वेदना सामित्त विहाणे वेदना वेदन विधान वेदन विहाणे वेदना गई विहाणे वेदना अनंतर विहाणे वेदना सन्नियास विहाणे वेयणा परिमाण विहाणे वेयणा भागा भाग विहाणे वेयणा अप्पा बहुगेति। अब इसका हिंदी, सूत्र का हिंदी पढ़ते हैं। अब वेदना अधिकार का प्रकरण है, दसवीं पुस्तक है अभी, उसमें वेदना के ये 16 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। वेदना निक्षेप, वेदना नय विभाषणता, वेदना नाम विधान, वेदना द्रव्य विधान, वेदना क्षेत्र विधान, वेदना काल विधान, वेदना भाव विधान, वेदना प्रत्यय विधान, वेदना स्वामित्व विधान, दसवां है वेदना, वेदन विधान। फिर वेदना गति विधान, वेदन हुआ है वेदना चाहिए, वेदना अनंतर विधान, वेदना सन्निकर्ष विधान, वेदना परिमाण विधान, वेदना भागा भाग विधान और वेदना अल्पभूतव। जैसे हम हमेशा ही अलग अलग अधिकार देखते हैं, वैसे वेदना के ये सब अधिकार है। देखिए जो वेदना नामक जो खंड है, हमने देखा था ना, वेदना खंड के दो अनुयोग, दो यहाँ कृति अनुयोग द्वारा देखा और यहाँ वेदना अनुयोग द्वारा हम देख रहे हैं। हमने नौवे पुस्तक में जो बहुत विस्तार से इसका ओरिजिन देखा था, क्योंकि जो श्रुतक ज्ञान के दो भेद किए थे, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, तो अंग में तो 12 अंग बताए थे, जो आचार अंग है, सूत्रकृतांग है, स्थानांग है, समवायांग है, फिर व्याख्या प्रज्ञप्ति था, ज्ञातृधर्म कथा, फिर उपासकाध्ययन, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपपाद दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवाद, ये 12 अंग हमने देखे थे। अब जो 12वां दृष्टिवाद अंग है उसमें 5 अधिकार बताए थे। पहला परिकर्म था, फिर सूत्र, प्रथमानुयोग, ये पूर्वगत और चूलिका। उसमें से पूर्वगत के भेद है, जो पूर्व कितने पूर्व थे हमने देखे थे, 14 पूर्व। तो 14 पूर्व में उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्य प्रवाद, अस्थि नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, फिर प्रत्याख्यान पूर्व, उसके बाद विद्यानुवाद, कल्याण, प्राणावाद, क्रिया विशाल और लोक बिंदुसार। ये 14 पूर्वों में से जो अग्रायणी पूर्व है, वो अग्रायणी पूर्व में 14 वस्तु है। क्योंकि भूल गए ना, हमने बहुत बार देखा था ये 14 वस्तु में से, ये जो 14 वस्तु उनके नाम हमने वहां पढ़े थे, उसमें से जो चैन लब्धि नामक जो 5वीं वस्तु है, उसमें हमने उसके नाम भी देखे थे कि पूर्वांत, उपरांत, अपरांत, ध्रुव, अध्रुव, चयन लब्धि 5वां था, अध्रुव संप्रणिधान, कल्प, अर्थ, बहुमावयाद्य, सर्वार्थ, कल्प निर्माण, अतीत काल व अनागत काल, सिद्ध और बुद्ध, ये 14 वस्तु में से 5वीं चयन लब्धि नामक जो वस्तु थी उसमें 20 प्रावृत है। चयन लब्धि में 20 प्रावृत है, उसमें चौथा प्रावृत का नाम है कर्म प्रकृति प्रावृत, जिसको महाकर्म प्रकृति प्रावृत भी कहते हैं। तो उस महाकर्म प्रकृति प्रावृत में 24 अनुयोग द्वार है, उसमें पहला है कृति और दूसरा है वेदना, फिर आगे 24 नाम सभी बताए हैं। तो ये कृति और वेदना जो है उसके अधिकार, तो कृति अनुयोग द्वार में हमने 9वीं पुस्तक देखी और वेदना अधिकार में अभी ये जो 16 अनुयोग द्वार अभी हम पढ़ रहे हैं, ये 16 अनुयोग द्वार जो बताए है वो तो चयन लब्धि के कर्म प्रकृति प्रावृत नामक जो उसका चौथा कर्म प्रवृत्ति प्रावृत, उसमें जो 24 अधिकार है उसमें से पहला कृति और दूसरा वेदना, उस वेदना की बात यहाँ चल रही है। अब इस वेदना में हमने ये 16 अनुयोग द्वार अभी नाम पढ़े, हमने सूत्र भी पढ़ा और उसका हिंदी अर्थ भी देखा। अभी हम पृष्ठ संख्या 2 पर आते हैं। ये सब हमने विस्तार से 9वीं पुस्तक में भी देखा था, पहली पुस्तक में तो विस्तार बताया ही बताया था। अब ये 2 नंबर के पृष्ठ पर सूत्र से नीचे वहां से पढ़ेंगे। पूर्वोदिष्ट यानी पूर्व में बताया हुए अधिकार का स्मरण कराने के लिए सूत्र में वेदना इस पद का निर्देश किया है। ये 16 नाम प्रथमा विभक्त्यंत है, यानी प्रथमा विभक्ति वाले हैं। शंका, यही 16 पदों के अंत में एकार का होना कैसे संभव है? देखो यहाँ प्राकृत देखो, वहां लिखा ना वेदना निखेवे, वेदना नए विभास ना ए, तो एकारांत हुआ ना वो सब। अगर आप प्रथमा विभक्ति कहते हैं तो ये तो सप्तमी विभक्ति हो गई, वेदना अनंतर विहाने, यानी उसमें ऐसा होता है। और यहाँ तो कहते हैं कि आप प्रथमा विभक्त्यंत है, उसका समाधान ए छ समाना। इस सूत्र से यहाँ एकार का आदेश किया गया है, इसलिए वैसा होना संभव है। यहाँ तो प्राकृत के व्याकरण का कुछ नियम है, इसलिए वो संभव है ऐसा कहते हैं। अब विषय की दिशा दिखलाने के लिए इन अधिकारों का समुदायार्थ कहते हैं, यानी वो विषय क्या है और वो सभी अनुयोग द्वारों के समुच्चयार्थ ने इकट्ठा करके उसका पहले अर्थ बताएंगे। वेदना शब्द अनेक अर्थों में वर्तमान है, यानी वेदना शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उनमें से अप्रकृत अर्थों को छोड़कर, अप्रकृत ने जो अविवक्षित हमको कहेंगे, हमें जिस अर्थ अपेक्षित है उसको छोड़कर बाकी सबको हम अप्रकृत कहेंगे। अप्रकृत अर्थों को छोड़कर प्रकृत अर्थ का ज्ञान कराने के लिए वेदना निक्षेप अनुयोग द्वार आया है। जैसे हमने कोई भी हम विषय पढ़ते हैं तो उसमें निक्षेप लगाते हैं, कोई भी हमने ज्ञान का विषय दिया या कोई भी जो है तो उसमें हम नाम स्थापना द्रव्य भाव आदि निक्षेप लगाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वेदना निक्षेप अनुयोग द्वारा आया है। अभी जो 16 नाम लिए ना, यहाँ पर पहला नाम था वेदना निक्षेप, फिर दूसरा नए विभाषा, यानी जैसे में निक्षेप है, नए है, फिर नाम कौन सा नाम है, वो सब बताएंगे यहाँ पर। तो ये जो अभी हमने 16 नाम पढ़े हैं उसका विषय क्या है उसको यहाँ बता रहे हैं। आप उसमें 1, 2, 3, 4 या अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अभी पहला ये वेदना निक्षेप अनुयोग द्वार एक नंबर का, जो हमने सूत्र में जिसको एक नंबर देखा था। चूंकि सभी व्यवहार नय के आश्रय से अवस्थित है, अतः यह नामादि निक्षेपगत व्यवहार किस किस नय के आश्रय से स्थित है, क्या कहना चाहते हैं? ये सारे ही व्यवहार होते वो निक्षेप के आधार से होते हैं, नय के आश्रय से होते हैं। यानी निक्षेप और नय ये तो वस्तु को समझने के लिए होते हैं। तो लौकिक जो व्यवहार है, किसी का नाम लेकर उसके बारे में बताएंगे तो उसका नाम भी बताते हैं। और हमने देखे ना, नाम स्थापना द्रव्य भाव हमने बहुत बार देखी थी। तो ये व्यवहार के लिए, तो यहाँ कहते कौन सा नए कौन सा निक्षेप कौन से नए का विषय है वो भी यहाँ बताएंगे। फिर से पढ़ते इसको। चूंकि सभी व्यवहार नए के आश्रय से अवस्थित है, व्यवहार नए के नहीं, सभी व्यवहार नए के आश्रय से अवस्थित है यानी पाए जाते हैं, अतः यह नामादि निक्षेपगत व्यवहार, नामादि यानी नाम स्थापना द्रव्य भाव वगैरह, ये निक्षेपगत निक्षेप के आधार से जो व्यवहार होते हैं वो किस किस नए के आश्रय से स्थित है, यानी कौन सा निक्षेप कौन से नए का विषय है, ऐसी आशंका जिसे है उसकी उस शंका का निवारण करने के लिए, अथवा अव्युत्पन्न जनों को व्युत्पन्न कराने के लिए। अव्युत्पन्न यानी जिसको कुछ पता नहीं है और उसको ये समझ में आवे इस तरह से उसको बताने के लिए, हाँ, अजान जीवों को, हाँ, जानकार बनाने के लिए, अनभिज्ञ, बहुत ये ज्यादा सही विषय शब्द है, अनभिज्ञ जीवों के लिए व्युत्पन्न कराना, यानी उसको अवगत कराना या वो जानकार हो जाए स्थिर। उसके लिए इन्हें पहले तो निक्षेप बताएंगे, अभी कौन से नए का विषय है तो कहते हैं उसके लिए वेदना नए विभाषण का अधिकार आया है। कौन से नए से कैसे कैसे व्यवहार होते हैं, कैसे कैसे उसका अर्थ निकलता है, जिसको हम नयार्थ कहते हैं, कौन से नए का क्या विषय है, तो ये वेदना नए विभाषणता ने उसके नयों के द्वारा उसका भाषण करना, कथन करना, ये दो नंबर डालो इसको, अंडरलाइन करके दो नंबर डालो, अधिकार आया है। अब तीसरे का स्वरूप बताते हैं, तीसरे अधिकार का, जो पुद्गल स्कंध बंध उदय और सत्व रूप से जीव में स्थित है, उनमें किस किस नय का कहाँ कहाँ कैसा प्रयोग होता है। इस प्रकार नय के आश्रय से प्रयोग की प्ररूपणा करने के लिए वेदना नाम विधान अधिकार आया। क्या कहना चाहते हैं? अब ये कर्मों की बात है ना, जो पुद्गल स्कंद बंध उदय और सत्व की बात है, जीव के जीव में स्थित है ऐसा जो कहते हैं, ये कर्मों की बात है। वेदना में सब कर्मों की ही बात है, कर्म को ही यहाँ वेदना कहने में आता है। तो वो भी अलग अलग नयों के आश्रय से उसके प्रयोग की बात करेंगे। हाँ, ये तीन नंबर पर वेदना नाम विधान अधिकार है। अब कहते कि वेदना द्रव्य एक प्रकार का नहीं है किंतु अनेक प्रकार का है, ऐसा ज्ञान कराने के लिए, अथवा संख्यात व असंख्यात पुद्गलों का प्रतिषेध करके, प्रतिषेध ने निषेध करके, क्योंकि कितने पुद्गल होते हैं एट ए टाइम, एक समय में तो अनंत पुद्गल परमाणु का ग्रहण होता है, यानी वर्गणा ही अनंत होते हैं, एक एक वर्गणा में पुद्गल परमाणु अनंत होते हैं। तो वो बताने के लिए अभव्य सिद्धिकों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत गुणे हीन पुद्गल स्कंध, ये जो समय प्रबुद्ध का प्रमाण है कितना है, अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण, जो पर्टिकुलर अनंत है विभक्त, उसकी बात है। ऐसे पुद्गल स्कंद, केवल ऐसे परमाणु नहीं कहा, ऐसे पुद्गल स्कंद जो वर्गणाएं हैं, जीव से समवेत होकर वेदना रूप होते हैं, यानी एक समय में इतने पुद्गल स्कंद, ये कारमाण वर्गणा कर्म रूप होते हैं, ये पुद्गल स्कंद वेदना रूप होते हैं, कर्म रूप होते हैं। ख्याल में आती है बात, ये वेदना का अर्थ क्या है, कर्म, कर्म द्रव्य कर्म की बात है यहाँ, यानी ये पुद्गल स्कंद जीव से समवेत होते हैं, कारमाण वर्गणा जो है, इतनी कारमाण वर्गणा है कर्म रूप परिणमित होती है। अपनी भाषा में यहाँ क्या लिखा है, इतने पुद्गल स्कंद जीव से समवेत होकर वेदना रूप होते हैं, यानी हमें जो शब्द मालूम है, इतनी कारमाण वर्गणाएं जीव के साथ समवेत होकर, संयोग होकर, उससे संबद्ध होकर वेदना रूप ने कर्म रूप परिणमित होते हैं, ऐसा ज्ञान कराने के लिए वेदना द्रव्य विधान अधिकार है। ये चार नंबर है। अब पांचवा नंबर, वेदना द्रव्यों की अवगाहना संख्यात क्षेत्र नहीं है। क्या कहते हैं, उसकी अवगाहना, वेदना द्रव्य जो है देखा ना हमने, तो वो पुद्गल स्कंदों की अवगाहना कहो, तो कितनी होते, तो संख्यात क्षेत्र नहीं है, किंतु अंगुल के असंख्यात विभाग से लेकर घनलोक पर्यंत है। ऐसा जतलाने के लिए वेदना क्षेत्र विधान अधिकार आया। ये पांच नंबर, उसका क्षेत्र बताएंगे। नहीं, सब जगह वेदना होना चाहिए, वेदना लिखा है, वेदना ही करेक्ट। नो नो नो, गलत बताया, वेदना और सूत्र में, सूत्र के अर्थ में गलत हुआ, क्योंकि मूल प्राकृत में वेदना लिखा है ना, प्राकृत में क्या लिखा है, वेदना है ना, वेदना ही होना चाहिए, हर जगह करेक्शन करना और पीछे लिख के रखना जरा। अभी मनीषा ने सूत्र में वेदना लिखे हुए है और आगे वेदना ने विभाषणा है, आगे क्या लिखा है, वेदन लिखा है, नहीं नहीं सब जगह उन्होंने गलत कर दिया। और अनुयोग द्वार में क्या लिखा है, वो वेदना अनुयोग द्वारा और वेदन अनुयोग द्वारा दोनों उसका अर्थ हो सकता है, उसमें उन्होंने वेदन कर लिया, परंतु वेदना हमने देखा था ना, सब जगह उन्होंने वेदन कर दिया है, वेदना 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 शब्द है, क्योंकि हमने देखा ना कृति अनुयोग द्वारा और वेदना अनुयोग द्वारा, इसे हमने देखा था वहां पर भी प्रकाश छाबड़ा की, उसमें एक जगह लिख के रखो, सब जगह ना होना चाहिए, वेदना होना चाहिए, प्राकृत में भी और संस्कृत में है, हिंदी में भी। यानी उन्होंने ओरिजिनल स्क्रिप्ट ही बदल दिया है, उसके अर्थ में भी ऐसा ही है क्या? प्राकृत का दूसरा पैराग्राफ देखो सूत्र के नीचे, एदेसी महियाराणम पिंडत्थो विषय दिसार ऋषनठम उच्चते वेणा शब्दस्य, वेणा शब्दस्य हाँ आगे लिखा है उसमें सेकंड लाइन में वेणा निखेवाणो है, अभी वहां तो लिखा है और ये मूल में क्यों इन्होंने चेंज की? और प्राकृत में चेंज करने का कोई अधिकार ही नहीं है अनलेस कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या ऐसी गलती हो। हाँ ऐसे थोड़े होता है उनकी, और इतना उन्होंने प्रूफ रीडिंग कैसे नहीं किया। हाँ ठीक है, अभी हम आगे पढ़ रहे थे, हम पांचवें नंबर पर आए हैं, वेदना क्षेत्र विधान अधिकार आया है, मिला। अब वेदना द्रव्य स्कंध, वेदना द्रव्य स्कंध यानी ये जो कर्म जो है वेदनात्व को न छोड़कर जघन्य और उत्कृष्ट रूप से इतने काल तक रहता है, ऐसा ज्ञान कराने के लिए वेदना काल विधान अधिकार आया है। वेदनात्व को न छोड़कर जघन्य उत्कृष्ट यानी कर्म की जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति कितने काल तक रह सकता है? वेदना द्रव्य स्कंध कहने से वो कर्म की बात है। वेदना द्रव्य स्कंध में संख्यात गुणे असंख्यात गुणे और अनंत गुणे भाव विकल्प नहीं है किंतु अनंतानंत भाव विकल्प है। भाव यानी उसके तो अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा लेना ही वहां पर। हाँ वो तो अनंत, जघन्य भी अनंत होते उत्कृष्ट भी अनंत अनंत होते, ऐसा ज्ञान कराने के लिए वेदना भाव विधान अधिकार आया है। सात नंबर इसको डालो, वेदना द्रव्य, वेदना क्षेत्र, वेदना काल और वेदना भाव निष्कारण नहीं है किंतु सकारण है, यानी वो कितने परमाणु आते हैं कितने क्षेत्र है उसका, उसका काल भाव ये सकारण है। भाव यानी इसको हम कहते हैं उसका अनुभाग, स्थिति और अनुभाग, काल और भाव यानी स्थिति और अनुभाग हो गया, किंतु यानी उसका कर्मों का जो अनुभाग हम कहते हैं वो उसमें आएगी। अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। वेदना काल विधान यानी उसकी स्थिति, स्थिति स्थिति बताइए, उसका देखो देखो अभी ये जो अभी तक हमने देखा है अभी इसको नंबर नहीं देना अभी तक। वेदना जो द्रव्य है, वेदना क्षेत्र जो हम ऊपर देख रहे, चौथे नंबर पर वेदना द्रव्य विधान था, पांचवें नंबर पर वेदना क्षेत्र था, छठे नंबर पर वेदना काल था और सातवें में वेदना भाव था। वो निष्कारण नहीं है किंतु सकारण है, उसका कारण अब बताएंगे। इस बात का ज्ञान कराने के लिए वेदना प्रत्यय विधान अधिकार आया है। ये कर्म के प्रत्यय ने जो हम कहे थे कर्माकांड में भी हमने प्रत्यय प्ररूपणा देखी थी कर्मों के, हाँ आश्रव यानी कर्मों के उदय को कहते हैं। यहाँ पर वेदना प्रत्यय में कर्मों के उदय को कहेंगे और जीव के भावों को भी कहेंगे। जैसे आश्रव में हम द्रव्याश्रव और भावाश्रव कहते हैं, द्रव्याश्रव में पुराने कर्मों का उदय को लेते हैं यानी बंध के कारण आश्रव भी कह सकते हैं उसको। अभी हमने देखे थे ना उस मूल प्रत्यय में चार हमने देखे थे, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, पांच में को नहीं कहते चार को लेते, वो मूल प्रत्यय और उत्तर प्रत्यय में फिर उसके भेद करेंगे मूल और उत्तर प्रत्यय। ये कर्मों के जो है ये आठवां नंबर हो गया, एक आदि संयोग से आठ भंग रूप जीव वो नौ जीव वेदना के स्वामी होते हैं या नहीं होते हैं इस प्रकार नयों के आश्रय से ज्ञान कराने के लिए वेदना स्वामित्व विधान अधिकार आया है। ये 9 नंबर, अभी वो अधिकार आएंगे तभी उसकी विस्तार से चर्चा होगी। उसका एक आदि संयोगगत बध्यमान, बध्यमान जो बंधने वाले, उदीर्ण यानी उदय में आने वाले, ये उदीर्णा नहीं लेना, उदीर्ण यानी उदय, उदय प्राप्त, उदीर्ण ही लिखते। वो उदीर्णा जो कहते ना, वो कर्मों की उदीर्णा होती है, वो बात अलग है। ये उदीर्ण यानी केवल उदय में आना, कर्म उदीर्ण हुए ने उदय में आए। और उपशांत रूप बध्यमान, उदीर्ण और उपशांत रूप, यानी अभी उदय में नहीं है तो सत्ता रूप, सत्ता में पड़े हैं, उसको उपशांत कहेंगे। वो उपशमने वाले उसकी बात नहीं, उपशम भाव वाली बात नहीं यहाँ पर। प्रकृतियों के भेद से जो वेदना भेद प्राप्त होते हैं, उनका नयों के आश्रय से ज्ञान कराने के लिए वेदना, वेदना विधान अधिकार आया है। ये 10 नंबर नहीं, ये 10 नंबर है। वेदना स्वामित्व है, मूल में वेदना, वेदना वेदन हुआ था, वेदना वेदन हुआ था, वेदना वेदन विहाने, वेदन विधान चाहिए, वेदना वेदन विधान चाहिए, वेदना वेदना नहीं है, वेदना वेदन है। मूल सूत्र में वेदना वेदन लिखा था, वेदना वेदन, और उसके बाद डैश भी दी थी। ऊपर इस प्राकृत में क्या है देखते हैं, इसी के ऊपर, ये जिसका ट्रांसलेशन है उसके ऊपर देखो, यहाँ लिखा है वेदना वेदना। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है उसको, वो भी नाम होगा। अभी थर्ड पेज देखो, ये जिसका अर्थ है वो प्राकृत पढ़ेंगे। नहीं देखो देखो, लास्ट लाइन वेयना व्यपन्नावनठम, वेयना वेयना विहानम आगयम, यानी दोनों बताते होंगे। वेदना वेदना, क्योंकि उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया है, मूल प्राकृत में शब्द है वेदना वेदना। अब द्रव्यादि के भेदों से भेद को प्राप्त हुई वेदना क्या स्थित है, क्या अस्थित है, या क्या स्थित अस्थित है? द्रव्यादि के भेद से वो द्रव्य क्षेत्र वगैरह जो बताए ना, काल की बात, भाव तो स्थित है क्या अस्थित है, या स्थित अस्थित है? इस प्रकार नए के आश्रय से परिज्ञान कराने के लिए वेदना गतिविधान अधिकार आया है। ये 11 नंबर। फिर एक एक समय प्रबद्धों का नाम अनंतर बंध है, एक के बाद होता रहता है ना, वो अनंतर बंध, एक समय में हुआ, एक समय प्रबद्ध, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। नाना समय प्रबद्धों का नाम परंपरा बंध है, अनंतर ने उसके पश्चात, उसके पश्चात, उसके पश्चात, यानी अनेक समय प्रबद्धों का नाम है परंपरा बंध, और उन दोनों ही का नाम है तदुभय बंध, दोनों ही अनंतर और परंपरा। इन तीनों का नए समूह के आश्रय से ज्ञान कराने के लिए वेदना अनंतर विधान करो, अंतर विधान नहीं। ऊपर देखो, वेदना अनंतर विहानम आगयम, तीसरी लाइन लास्ट में न शब्द डालो, ब्रह्मा, अंतर विधान लिखा है ना, वो अनंतर विधान करो। अब कहते द्रव्य वेदना, क्षेत्र वेदना, काल वेदना और भाव वेदना, इनके उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, यानी हर एक में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट लगाना, जघन्य और अजघन्य पदों में से एक को विवक्षित करके शेष पदों का ज्ञान कराने के लिए वेदना सन्निकर्ष विधान अधिकार आया है। आपको शायद याद होगा, हमने महाबंध में बहुत देखे थे एक का होता है बंध, तो अन्य का क्या क्या होता है। हाँ, यहाँ तो ये है कि द्रव्य की अपेक्षा ये होगा तो क्षेत्र और काल और भाव क्या क्या होगा, इस तरह से उसकी बात है। या एक कर्म के द्रव्य उत्कृष्ट होता है तो दूसरे का कितना होता है, एक का स्थिति जघन्य होगी तो दूसरे की क्या होगी, इस तरह से। जो हमने सन्निकर्ष देखे थे महाबंध में, वो बात यहाँ पर पाई जाती है। तो वेदना सन्निकर्ष विधान 13 नंबर, प्रकृतियों के काल और क्षेत्र के भेद से मूल और उत्तर प्रकृतियों के प्रमाण का प्ररूपण करने के लिए वेदना परिमाण विधान। परिमाण यानी प्रमाण, यानी काल की अपेक्षा और क्षेत्र की अपेक्षा उसके भेद करेंगे, मूल प्रकृतियों के और उत्तर प्रकृतियों के। ये 14 नंबर हुआ वेदना परिमाण विधान। अब प्रकृति अर्थता, स्थिति अर्थता यानी उसी का नाम है, समय प्रबद्ध अर्थता और क्षेत्र प्रत्याश्रय में उत्पन्न हुई प्रकृतियां, सब प्रकृतियों के कितने विभाग प्रमाण हैं, यह जतनाने के लिए वेदना भागा भाग विधान अधिकार आया है। वो कौन से कितने भाग प्रमाण है, वैसे हम हमेशा भागा भाग जो अधिकार देखते वो बात यहाँ है। हाँ, प्रकृति की अपेक्षा, स्थिति की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा। हाँ, वो कौन सी प्रकृतियां, कौन सब प्रकृतियों के कितने भाग प्रमाण है, ये बात बताएंगे। और इन्हीं 3 प्रकार की प्रकृतियों का एक दूसरे की अपेक्षा अल्प बहुत्व बतलाने के लिए वेदना अल्प बहुत्व विधान अधिकार आया है। इस प्रकार इन 16 अनियोग द्वारों की समुदाय कहते हैं, समुदाय ने उसका समूह, समुदायार्थ प्ररूपना की गई है। हाँ, दा करो, द पिंडत्थ परुणा कया, यानी समुदायार्थ पहले बताया था उन्होंने, समुदाय प्ररूपना करता है, पहले शब्द आया था। देखो यहाँ पर पेज नंबर 2 पर नीचे का पैराग्राफ जहाँ शुरू होता है, पहली लाइन में लास्ट में क्या लिखा, इन अधिकारों का समुदायार्थ कहते हैं। और यहाँ तो वही बात है, वो समुदायार्थ प्ररूपना की गई है, समझ में आई ना बात, मिला ब्रह्मा। समुदायार्थ शब्द आया था ना वहां पर, इसलिए यहाँ पर भी करेक्शन कर दिया, समुदायार्थ होना चाहिए। उसी को यहाँ पिंडत्थ परुवणा कहा था, ऊपर पिंडत्थ ने इकट्ठा सबका। अब 5 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं, ये जरा थोड़े हम फुटनोट भी देख लेते क्या है, 4 नंबर का फुटनोट। उसको फुटनोट में 1, 2, 3 नाम नहीं डालते, वहां कोई चिन्ह बनाए हैं। देखो प्राकृत में दूसरी लाइन, अनंतर बंध जिसको कहता है, यानी एक एक समय प्रबद्ध को लिखा था, उसके लिए नीचे लिखा है अनंतर बंधो नाम, यानी उसका अर्थ अनंतर बंधो का अर्थ। आपके नंबर डाले, देखो अनंतर बंध का जो चिन्ह है वो नीचे देखो, आप क्या कह रहे, वो सेकंड नंबर पर आपका चिन्ह, अच्छा हमारे में बराबर है। तो अनंतर बंध का अर्थ देखते हैं, देखो कम्मय वगणाए ठिद पोगल स्कंधा खंदा मिच्छतादि कम्म भावेन परिणद पढ़म समय अनंतर बंधो, यानी वो उसका अर्थ है जो कारमाण वर्गणा है, उस रूप से स्थित जो पुद्गल स्कंध है वो मिथ्यात्वादी कर्म भाव से परिणत होकर प्रथम समय में अनंतर बंध होता है। फिर पते परंपरा बंध किसको कहना, वो परंपरो बंधो नाम। हाँ, ऊपर प्राकृत में सेकंड लाइन में थी, वो चिन्ह वहां का यहाँ नीचे देखना, बंध विधिय समय पौड़ी कम्म पोगल खंदानम जीव पदेशानम च जो बंधो सो परंपर बंधो नाम। पहले समय में हुआ वो अनंतर बंध हुआ और प्रति समय उसके पश्चात द्वितीय आदि समयों में जो जो होता रहेगा। विधिय समय पौड़ी यानी दूसरे समय से लेकर पौड़ी यानी वहां से लेकर उसको परंपरा बंध कहेंगे परंपर बंधो। अब जो दो अन्य जो चिन्ह बनाए उन्होंने सन्निकर्ष के लिए वो शब्द आया था वेदना सन्नियास विहानम। सन्नियासो नाम किम सन्निकर्ष का अर्थ क्या होता है। दौव खेत काल भावेशु जहन्न उक्कस भेद भेद भिन्नेशु क्या कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में जघन्य और उत्कृष्ट भेद के द्वारा जो भिन्न भिन्न जो है एकम्मी विरुद्धे शेषाणी अने एक एक में एक एक को रोक कर या एक एक के अगेंस्ट विरुद्ध है ने एक एक को लेकर उसके सामने शेषाणी यानी अन्य जो है कि मुक्कसाणी कि अनुक्कसाणी यानी जहाँ द्रव्य की अपेक्षा जघन्य तो क्षेत्र काल भाव कैसा होगा उत्कृष्ट होगा के इस तरह से उसमें आपस में सन्निकर्ष बता रहे किम जहन्नानी किम अजहन्नानी वा पदानी होंती ती जा परीक्षा यानी ऐसे जो उसमें जो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होगी उसकी जो परीक्षा होगी सो सन्नियासो नाम उसको सन्निकर्ष कहते। ये सन्निकर्ष क्या है हमने महाबंध में देखा था वहाँ एक एक प्रकृति में प्रकृति के जगन्य रहने पर अन्य की क्या पोजीशन है उसकी बात देखी थी। यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भावों में वो जहन्य उत्कृष्ट भेदों में एक एक को अगेंस्ट दूसरे के अगेंस्ट लेना है। हाँ अभी आते हैं पांच नंबर का पृष्ठ। अभी हमने वहां पर एक और चिन्ह था पयड़ी और उसके लिए पहुड़ी ऐसा भी शब्द आता है कहीं कहीं वो तो पाठांतर बताया है। अब पांच नंबर पर आना यहाँ सोलह अनुयोग द्वार यह देशामर्शक वचन है। देशामर्शक का अर्थ थोड़े में बहुत उसमें अर्थ निकलता है क्योंकि मुक्त जीव समवेत आदि अन्य अनुयोग द्वार भी पाए जाते हैं यानी उसमें अन्य भी अधिकार पाए जाते हैं। अब इन अनुयोग द्वारों में से प्रथम अनुयोग द्वार की प्ररूपणा करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। देखो यहाँ क्या कहते हैं देखो विषय परिचय जहाँ लिखा है ना उसको जरा पेज नंबर एक निकालना। अभी जो हमने सोलह नाम देखे हैं वही वहां बताए हैं उसके लास्ट में एक पहले पैराग्राफ विषय परिचय का है वहां लास्ट लाइन में क्या लिखा है देखो प्रस्तुत पुस्तक में इनमें से आदि के चार अनुयोग द्वार प्रकट किए जा रहे हैं यानी वेदना निक्षेप वेदना नय विभाषणता वेदना नाम विधान। देखो देखो प्रस्तावना विषय परिचय जहाँ लिखा था हाँ तो उसमें पहले पैराग्राफ के लास्ट लाइन में क्या लिखा है इस पुस्तक में यहाँ चार ही अनुयोग द्वार है वो इसका विषय। अभी उसके ऊपर उसके चार नाम देखो वेदना निक्षेप वेदना नय विभाषणता वेदना नाम विधान और वेदना द्रव्य विधान इसके बाद यहाँ चलेगी यहाँ लिखा है। हाँ तो अगर वेदन करना होता तो उनको जो संपादक है उनको तो पता चलता ना वेदन लिखना चाहिए यानी वो जो कुछ गलती हो गई है ये चार हम पूरे पुस्तक में चार अनुयोग। हाँ बस अभी यहाँ पढ़ेंगे दो नंबर का सूत्र वेयणा निखेवेत्ति चौविहे वेयणा निखेवे। अब पांच नंबर का हाँ ये सूत्र दो नंबर हाँ वो पहला निक्षेप यहाँ शुरू हो गया यानी सोलह अनुयोग द्वार में से पहला तो ये वेदना निक्षेप का प्रकरण है। वेदना का निक्षेप चार प्रकार का है, ऊपर लिखा था चौविहे यानी चार प्रकार का, वेयणा निक्षेपे, वेदना का निक्षेप चार प्रकार का है। ये वो निक्षेप पे लिखा है, निक्षेपे लिखा है, परंतु उसका अर्थ ये प्रथमान यानी प्रथम विभक्ति समझना, उन्होंने बताया था पहले। यहाँ वेदना निक्षेप यह पद पूर्वोद्दिष्ट अर्थाधिकार का स्मरण कराने के लिए कहा है, क्योंकि पहले उसमें 16 अनुयोग द्वारा बताया है, उसमें से पहला है यह बताने के लिए, फिर वो वेदना निक्षेप ये बताते हैं। अन्यथा इसका सुखपूर्वक ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ भी पूर्व के समान ए छच्च समाना इस सूत्र से ओकार के स्थान में एकार आदेश समझना चाहिए। निखे वो के बदले निखे वे किया है, परंतु वो समान हो सकता है, ये उनका अर्थ है। ये समझ गए ना? जैसे हम वो चत्तारी मंगल पाठ पढ़ते हैं, तो उसमें लोगोत्तमा किसके लिए कहते हैं, लोगोत्तमो किसके लिए कहते हैं, अनेक वचन आया लोगोत्तमा और केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो एक है, तो यहाँ ओ होना चाहिए था, ये उनका कहना है। प्रश्न क्या था, निखवो के बदले निखेवे क्यों लिखा, तो कहते वो समान अर्थ में आता है। अब ये हो गया वेदना निक्षेप चार प्रकार का है, यह भी देशामर्शक वचन है, क्योंकि पर्यायार्थिक ने का अवलंबन करने पर क्षेत्र वेदना व काल वेदना आदि भी देखी जाती है। हमने प्रथम पुस्तक में देखा था कि 6 निक्षेप लगाए थे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और ये दो क्षेत्र और काल भी, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव और नाम स्थापना सब, यानी वहां कैसे देखा था, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 6 निक्षेप होते हैं डिटेल में, परंतु मुख्य रूप से 4 ही की सब जगह विशेष चर्चा होती है। अब ये 4 के नाम बता रहे यहाँ पर, नाम वेयणा, ठवण वेयणा, दव वेयणा, भाव वेयणा, चेदी। नाम वेदना, स्थापना वेदना, द्रव्य वेदना और भाव वेदना, उनमें से एक जीव अनेक जीव आदि 8 प्रकार के बाह्य अर्थ का अवलंबन न करने वाला वेदना शब्द नाम वेदना है। क्या कहते हैं, एक जीव और अनेक जीव उसके कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, एक के साथ एक अनेक होगा, अनेक के साथ भी एक अनेक होगा, इस तरह से उसके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी वो जीवों की बात नहीं देख के केवल वेदना है, हमने नाम रख दिया, वो वेदना नाम निक्षेप हो गया। नहीं तो वेदना का अर्थ कर्म करते हैं, उसमें तो जीवों की अपेक्षा है ना, जीव वो वेदना करने वाला तो जीव है, कर्मों के उदय में ये पहली परिभाषा बताई थी ना उन्होंने 8 कर्मों के उदय में, यहाँ लिखा है देखो मंगलाचरण के अर्थ में देखा था, 8 कर्मों के निमित्त से हुई उत्पन्न हुई वेदना रूप समुद्र को पार करने वाले उसको वेदना कहा। तो यहाँ जीवों की कुछ बात नहीं लेते हुए केवल किसी चीज का वेदना नाम रख दिया, वो नाम निक्षेप है। जो हमेशा हम नाम निक्षेप का जो परिभाषा उसकी करते हैं, वही बात यहाँ बता रहे हैं। तो कहते वेदना शब्द नाम वेदना है, केवल वेदना शब्द इटसेल्फ नाम वेदना हो गए। शंकाकार पूछते अपनी अपने आप में प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, यानी शब्द की अपने आप में प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, ये प्रश्न है उनका। उसका समाधान नहीं, क्योंकि जैसे अपने आप को प्रकाशित करने वाले प्रदीप, सूर्य, चंद्र वो मणि पाए जाते हैं, वैसे यहाँ भी जानना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, जैसे जो प्रकाशित वस्तुएं होती है उनके प्रकाश में तो अन्य चीजें तो दिखती है, यानी वो अन्य को प्रकाशित करते ही है, वो स्वयं प्रकाशित होने के लिए, वो अपने को बताने के लिए उन्हें अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं होती, उसके लिए उदाहरण लिया है प्रदीप यानी दीपक, सूर्य, चंद्र और मणि, यानी उनको देखने के लिए कोई अन्य प्रकाश टॉर्च वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप को प्रकाशित करने वाले हैं। वैसे शब्द भी होते हैं जिसको वाचक कहने आता है, तो वाचक को तो बताता है और स्वयं को भी बताता है, वो स्वपर वाचक बताते, जैसे ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, वो शब्द स्वपर वाचक होते हैं। यही पूछ रहे विशंका, संकेत की अपेक्षा किए बिना शब्द अपने आप को कैसे प्रकाशित करता है? यानी कोई चीज को बताने वाला होना चाहिए ना, कोई चीज नहीं तो शब्द अपने आप को कैसे प्रकाशित करेगा? उसका समाधान नहीं, क्योंकि वैसी उपलब्धि होती है, यानी वैसा पाया जाता है, और वैसी उपलब्धि होने पर अनुपपत्ति मानना ठीक नहीं है, यानी वैसा पाया जाता है और फिर भी वो नहीं होता है मानना बराबर नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अव्यवस्था की आपत्ति आती है। दूसरे यानी दूसरी बात, शब्द संकेत के बल से ही बाह्य अर्थ का प्रकाशक हो ऐसा नियम भी नहीं है, क्योंकि नाम शब्द के बिना शब्द और अर्थ का वाच्यवाचक रूप से संकेत करना नहीं बन सकता। यानी शब्द जो है वो संकेत के बल से, संकेत के द्वारा ही बाह्य पदार्थों को बताने वाला है, इसी नियम नहीं है, क्योंकि नाम शब्द के बिना, यानी जो शब्द जो है वो बाह्य अर्थ का वाचक बता नहीं जाता है, तो वो तो उसका बाह्य अर्थ को नाम रखते हैं तभी तो उसको बताता है। ये कहते हैं कि नाम शब्द के बिना शब्द और अर्थ का वाच्यवाचक रूप से संकेत करना नहीं बन सकता। नाम अर्थ है, हमने ये चीज का नाम रखा पेंसिल, तो पेंसिल ये शब्द इस पेंसिल को तभी सूचित करता है जब हमने उसको उस नाम से हम उसको पहचानते हैं, तभी ये यहाँ कहना चाहते हैं। देखो देखो क्या कहते हैं, नियम किसके लिए नहीं कहा, नहीं नहीं नाम के लिए, केवल शब्द अपने को प्रकाशित करता है कि नहीं, केवल वो पर को ही प्रकाशित करता है, पर को प्रकाशित करने में संकेत काम आता है, परंतु शब्द हमने बोल दिया, शब्द वो अर्थों को प्रकाशित करे नहीं करे उससे क्या है, वो शब्द तो स्वयं अपने को घोषित कर ही रहा है ना, शब्द तो हम सुनते हैं ना, तो हमने जैसे हमको हमने कोई अन्य भाषा का शब्द सुना, हमें उसका अर्थ नहीं मालूम है किसको संकेत कर रहा है, पर शब्द तो ध्वनित हो ही रहा है ना, वो ये कहना चाहते। देखो ऊपर शंका क्या पूछी थी, संकेत के अपेक्षा किए बिना शब्द अपने आप को कैसे प्रकाशित करता है, क्योंकि वैसी उपलब्धि होती है, तीसरी बात, शब्द और अर्थ का संकेत किया जाता है ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर एक तो अनवस्था दोष आता है, और दूसरे शब्द में स्वयं ऐसी शक्ति के रहने पर दूसरे से उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। जैसे शब्द में क्या शक्ति है कि बताना, अभी वो शब्द समझने के लिए भी किसी अन्य की आवश्यकता हो तो ये बात नहीं बन सकती। जैसे ज्ञान के द्वारा हमने ये पदार्थ सामने का जान लिया, अब वो ज्ञान को समझने के लिए और तीसरे कोई चीज की जरूरत है क्या, ये कह रहे हैं अन्य के लिए। हाँ, ये शब्द दूसरों को बताता है, पर शब्द को बताने के लिए अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं, ये कहना चाहते हैं, जिसको है अनवस्था दोष आता है। यहाँ लिखा ना शब्द में दूसरे, यानी शब्द में स्वयं ऐसी शक्ति के रहने पर दूसरे से उत्पत्ति मानने में विरोध आता है, इसलिए इस विषय में अनेकांत की योजना करनी चाहिए। अनेकांत यानी वो सर्वथा एक ही, उसमें पकड़ने की जरूरत नहीं है। विशेषार्थ अभी हम पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ नाम वेदना का निर्देश करते समय नाम निक्षेप को अनिमित्तक बतलाया गया है, यानी जो नाम रखते हैं उसके में भी कोई निमित्त की जरूरत नहीं कि ऐसा होने पर वो वैसा ही नाम चाहिए, यानी बिना कुछ हम किसी भी चीज का कोई भी नाम रख सकते हैं। इस पर यह प्रश्न हुआ कि यदि नाम निक्षेप अनिमित्तक माना जाता है तो यह कैसे मालूम पड़े कि यह अमुक नाम है। सर्वत्र साधारणतः विवक्षित पदार्थ के आधार से विवक्षित नाम का ज्ञान हो जाता है, किंतु जब नाम निक्षेप में नाम शब्द का आधारभूत कोई पदार्थ ही नहीं माना जाता है तो उस नाम शब्द का ज्ञान ही कैसे हो सकेगा। इस प्रश्न का जो समाधान किया है उसका भाव यह है, जिस प्रकार चंद्र आदि पदार्थ स्वभाव से स्वप्रकाशक होते हैं उसी प्रकार नाम शब्द भी जानना चाहिए। वह स्वभाव से ही स्व में प्रवृत्त है, उसे अन्य आलंबन की कोई आवश्यकता नहीं है। शब्द स्वतंत्र है तभी तो शब्द का अर्थ के साथ वाच्यवाचक संबंध हो सकता है। यदि शब्द में शब्द और अर्थ दोनों का संकेत माना जाए तो इसे अनवस्था का प्रसंग आता है, यानी वो शब्द में ही शब्द और अर्थ है ऐसा मानेंगे। इसलिए इस विषय में सर्वथा एकांत नहीं मानना चाहिए, किंतु ऐसा समझना चाहिए कि कथनचित कोई भी शब्द स्वयं प्रवृत्त हुआ है और कथनचित पदार्थ के आलंबन से प्रवृत्त हुआ है, यानी दोनों ही की वह स्वीकार है। यहाँ नाम निक्षेप की प्रमुखता है इसलिए अन्य आलंबन का निषेध किया है, यानी कोई अन्य पदार्थ का आलंबन करके ही नाम होता है ऐसी कोई बात नहीं, बस नाम है, वेदना नाम है, इतना ही उसका अर्थ होता है। अब स्थापना की बात करेंगे। पेज नंबर 7 पर आए हम। वह वेदना यह है, इस प्रकार वह कह के वेदना नामक यानी जो कर्म जो है वो यह है कह के किसी अन्य पदार्थ में उसको हम बता रहे हैं, ये वेदना यह है या हम कहें ये हमारा ज्ञानावरण कर्म है किसी अन्य चीज में। इस प्रकार अभेद रूप से जो अन्य पदार्थ में वेदना रूप से अध्यवसाय होता है ना, उसमें हमारा मानना होता है कि जो अन्य चीज है उसमें हमने वो वेदना का उसकी स्थापना की, उसको मान लिया, वेदना रूप से अध्यवसाय होता है वह स्थापना वेदना है, यानी उसमें वो उस रूप से जाना जाता है। वह सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना के भेद से दो प्रकार के हैं। अध्यवसाय ने जानना, वो मिथ्या मान्यता रूप वो बात यहाँ नहीं है। हाँ, अन्य व्यवसाय है। हाँ, ये सही जानकारी के लिए भी अध्यवसाय शब्द आता है कहीं कहीं। ये ज्ञान के भी भेद होते हैं, अनध्यवसाय कुछ तो है, यानी शंका वो संशय में आता है, अनध्यवसाय में निर्णय नहीं है, तो निर्णय से ऐसा सही जानना उसको अध्यवसाय कहते हैं। वो स्थापना वेदना हो गई, उसमें सद्भाव और असद्भाव दो प्रकार है। उनमें से जो द्रव्य का भेद प्रायः वेदना के समान है उसमें इच्छित द्रव्य अर्थात वेदना द्रव्य की स्थापना करना सद्भाव स्थापना वेदना है, ना करना स्थापन हुआ है दोनों जगह, सद्भाव स्थापना वेदना है और उससे भिन्न असद्भाव स्थापना वेदना है। यानी जो वेदना के समान द्रव्य है उसमें वेदना की स्थापना करना, जिसको हम कहते हैं ना तदाकार, उस टाइप का है समझना ही है। अब द्रव्य निक्षेप लगा रहे हैं, वेदना पर द्रव्य निक्षेप। द्रव्य वेदना दो प्रकार की है। ये द्रव्य वेदना कहने से द्रव्य कर्म नहीं समझना, ये द्रव्य निक्षेप लगा रहे हैं हम। किसमें भिन्न चाहिए, भिन्न मिश्र नहीं, भिन्न। ये जो भूले है वो पीछे रख के रखा है, वो मनीषा तो हाँ। वो वेदना वेदना तो ठीक है, एक बार लिख लो।
हाँ
तो वहाँ करते रहो चलो। हाँ जो फिर उसको बताएंगे लिखने को। हाँ हाँ देखो करके रखो ना अपने पुस्तक में। ये भिन्न के बदले भिन्न चाहिए, उससे भिन्न ऊपर लिखा है देखो, अन्ना लिखा है ना, अन्य अन्य। अभी आगे द्रव्य वेदना दो प्रकार की है, आगम द्रव्य वेदना और नो आगम द्रव्य वेदना। ये निक्षेप के हम भेद अगर ख्याल में लेंगे ना, द्रव्य निक्षेप के दो भेद कहते हैं, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम में वो उपयोगी वाला जीव, उसमें जानकार जीव, उसमें उपयोग रहित लेना, और नो आगम में फिर वो ज्ञायक शरीर, वो भावी तद्यतिरिक्त, इसे भेद करना। अब यही बात यहाँ बताएंगे, आगम द्रव्य वेदना और नो आगम द्रव्य वेदना। जो वेदना प्रावृत का जानकार है किंतु उपयोग रहित है, उपयोग रहित है ना, उसमें उपयोग नहीं, अन्यत्र उपयोग है उसका, वह आगम द्रव्य वेदना है, उस जीव को आगम द्रव्य वेदना कह रहे। नो आगम द्रव्य वेदना ज्ञायक शरीर, भव्य और तद व्यतिरिक्त के भेद से तीन प्रकार के हैं। उनमें से ज्ञायक शरीर यह भावी, वर्तमान और त्यक्त के भेद से तीन प्रकार का, जिसको हम कहते हैं भूत भविष्य और भूत वर्तमान और भविष्य वाला। यानी जो छोड़कर शरीर आया उसकी अपेक्षा, फिर उसमें और भी भेद करते उसके बाद छोड़ दो। जो वेदना अनुयोग द्वार का अजानकार है, नो आगम लेना है, सॉरी भावी वाली, भावी नो आगम। जो वेदना अनुयोग द्वार का अजानकार है किंतु भविष्य में उसका उपादान कारण होगा, वह भावी नो आगम द्रव्य वेदना है। अभी यहाँ भव्य कहा, यहाँ भावी कहा, वही बात है। वो एक तो ज्ञायक शरीर के तीन भेद देखे, भावी वर्तमान और त्यक्त, ये जो ऊपर भव्य लिखा है उसी को यहाँ भावी लिखा है, वो जीव की बात है, जो अभी नहीं जान रहा है भविष्य में जानेगा, उसको भावी नो आगम द्रव्य वेदना कहा। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य वेदना, ये जो नो आगम द्रव्य वेदना है ना उसके ये भेद है। नो आगम का पहला भेद उन्होंने ज्ञायक शरीर किया, दूसरा भेद वो भावी दख, और तीसरा भेद तद व्यतिरिक्त था। अब ये जो तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य वेदना है उसमें दो भेद कर दिए, कर्म और नो कर्म भेद से दो प्रकार की है। यानी ये कर्म भी है और नो कर्म, वो कुछ नहीं जान रहे हैं, तो उसको कैसे लिए, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य वेदना कहा। उनमें से कर्म वेदना ज्ञानावरण आदि के भेद से आठ प्रकार की है, तथा नो कर्म नो आगम द्रव्य वेदना। कर्म को कैसे कहेंगे, कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य वेदना, और ये नो कर्म जो है, नो कर्म के पीछे वो तद व्यतिरिक्त शब्द नहीं लगाया है, वो भी आना चाहिए, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य वेदना। अब उसके भेद बता रहे हैं, सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से तीन प्रकार की है। यानी जो कर्म नहीं है वो बात नो कर्म में लिया, उसमें सचित्त अचित्त और मिश्र लिए। उनमें से सचित्त द्रव्य वेदना सिद्ध जीव द्रव्य है, नहीं जानकार ऐसा, ये क्या है, ऐसा क्यों लिखा, तद व्यतिरिक्त यानी जिसके वो तो अचित्त द्रव्य वेदना पुद्गल काल सिद्ध जीवों को लिया है, उसमें क्या लिखा है। हाँ वो द्रव्य वेदना कौन सा द्रव्य वेदना लिए यहाँ? नो अगम तद व्यतिरिक्त ऐसा, यानी नो कर्म नो आगम, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य वेदना, यानी जो जानकार नहीं है वो नो आगम कहा। तद व्यतिरिक्त भेद थे कर्म और नो कर्म, उसमें से नो कर्म लिया। वो उससे साथ कर्म उसका संबंध नहीं, ऐसा जीव लिया है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा था, पहले जो मंगलाचरण में अर्थ किया था ना, आठ कर्मों के निमित्त से जो दो वेदना होती उसको वेदना कहा है। आठ कर्मों के निमित्त से उत्पन्न हुई वेदना, अभी यहाँ उनके कर्म का संबंध नहीं, इसलिए वो सचित्त द्रव्य वेदना क्या है वो सिद्ध जीवों को लिया। अचित्त द्रव्य वेदना क्या है? पुद्गल आकाश काल आकाश धर्म अधर्म द्रव्य। मिश्र द्रव्य वेदना संसारी जीव द्रव्य है, क्योंकि वो कर्म और नौकर्म का जीव के साथ हुआ संबंध जीव और जीव से भिन्न रूप से देखा जाता है। मिश्र वाला है ना, न जीव है क्यों, प्योर जीव है ना अजीव है। अब आठ पेज पर आना, भाव वेदना, आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार की हैं। उनमें से जो वेदना अनुयोग द्वार का जानकार होकर उसमें उपयोग युक्त है वह आगम भाव वेदना है, और नो आगम भाव वेदना जीव भाव वेदना और अजीव भाव वेदना के भेद से दो प्रकार की है। उनमें से जीव भाव वेदना औदयिक आदि के भेद से पांच प्रकार की है। आठ प्रकार के कर्मों के उदय से उत्पन्न हुई वेदना औदयिक वेदना है, ये जीवों के भाव में ले लेना। कर्मों के उपशम से उत्पन्न हुई वेदना उपशमिक वेदना है, उनके क्षय से उत्पन्न हुई वेदना क्षायिक वेदना है, उनके क्षोभशम से उत्पन्न हुई अवधि ज्ञानादि स्वरूप वेदना क्षौक्षमिक वेदना है, और जीवत्व भव्यत्व उपयोग आदि स्वरूप पारिणामिक वेदना है। सुवर्ण पुत्र व सुवर्ण सहित कन्या आदि से उत्पन्न हुई वेदनाओं का इन पांच में ही अंतर्भाव हो जाता है, अतः उन्हें अलग से नहीं कहा है। यानी वो कर्मों की और नौकर्म की बात की थी, नौकर्म में सुवर्ण पुत्र ने वो सचित्त अचित्त और मिश्र ऐसा ले लिया, उसी में अंतर्भाव कर दिया। ये नौ आगम में ले लिया सबको, और जो पहले अजीव भाव वेदना कही है वह दो प्रकार की है। देखो जीव भाव वेदना में जीव के पांच भाव ले लिया, और उसी में वो सचित्त अचित्त मिश्र ले लिया, वो जीव के साथ उसको ले लिया। और जो पहले अजीव भाव वेदना कही है वह दो प्रकार की है, यानी भाव निक्षेप में जो नौ आगम में जीव और अजीव ऐसे दो भेद किए थे, तो नौ आगम का दूसरा भेद अजीव भाव वेदना औदयिक और पारिणामिक, उनमें प्रत्येक पांच रस पांच वर्ण दो गंध आठ स्पर्श आदि के भेद से अनेक प्रकार की है। यानी औदयिक में भी और पारिणामिक में भी आठ अलग अलग भेद हो गए। इस प्रकार इन अर्थों में वेदना शब्द वर्तमान है, यानी इतने उसमें निक्षेप लगेंगे। अब पूछेंगे इनमें से यहाँ कौन सा होगा इस पुस्तक का विषय, किंतु यहाँ कौन सा अर्थ प्रकृत है यह नहीं जाना जाता है, वह भी प्रकृत अर्थ नय ग्रहण में लीन है, अतएव प्रथम नय विभाषा की जाती है। देखते निक्षेप केवल निक्षेपों के द्वारा नहीं ख्याल में आता, भी नए भी बताएंगे। इस प्रकार वेदना निक्षेप इस नाम का अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। विशेषार्थ कहते हैं, यहाँ सर्वप्रथम वेदना निक्षेप इस अधिकार का निर्देश किया गया है। देखो देखो, हाँ, इस प्रकार वेदना निक्षेप इस नाम का अनुयोग द्वार समाप्त हुआ, ये कहा उसमें। वेदना निक्षेप इस नाम का अनुयोग द्वार समाप्त हुआ, ऊपर लिखा है प्राकृत में, एवं वेयन निक्षेवेति समत्तम अनुयोगतारम, नाम का अनुयोग द्वार। वेदना निक्षेप एक शब्द है, इस नाम का अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। और उसके लिए प्रूफ है ऊपर लास्ट प्राकृत की लाइन, एवं वेयन निक्षेवे ति समत्तम अनियोगत दारम। यहाँ वेयन निक्षेवा किया। अब आगे बढ़ते हैं विशेषार्थ। यहाँ सर्वप्रथम वेदना निक्षेप इस अधिकार का निर्देश किया गया है। वेदना निक्षेप चार प्रकार का है, नाम वेदना, स्थापना वेदना, द्रव्य वेदना और भाव वेदना। निक्षेप के यद्यपि और अनेक भेद है, पर सूत्रकार ने मुख्य रूप से चार का ही ग्रहण किया है। शेष का ग्रहण देशामर्शक भाव से हो जाता है, यानी वो इसमें हम उसमें से निकाल कर बता सकते हैं। बाह्य अर्थ के आलंबन के बिना, से नहीं, आलंबन के बिना वेदना शब्द नाम वेदना है। यानी किसी वो कर्म के लिए है क्या, किसी जीव के लिए, वो कोई नहीं, हमको कोई अन्य अर्थ को नहीं बताने वाला, केवल नाम जो है वो नाम वेदना। इसमें वेदना शब्द की ही प्रमुखता है। तात्पर्य है कि किसी अन्य पदार्थ का वेदना ऐसा नाम रखना यहाँ नाम वेदना विवक्षित नहीं है, किंतु स्वतंत्र रूप से वेदना ऐसा नामकरण ही नाम वेदना है। यानी किसी पदार्थ को नाम वेदना नहीं कह रहे हम, बस नाम वेदना ये शब्द इटसेल्फ। किसी वो तो पुद्गल में ले लिए, नहीं नहीं, वो देखो पुद्गलों के स्कंद जो होते हैं ना, तो उनमें वो उसका विभाव है, तो उसको उसका औदयिक भाव कहा है। यह 9 नंबर के पेज पर है, पहली लाइन लास्ट। किसी पदार्थ में वेदना इसी स्थापना करना स्थापना वेदना है। हमेशा ये जो हमने निक्षेप लगाते वैसा ही है, पर इसके सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना इसे दो भेद है। सद्भाव स्थापना तदाकार पदार्थ में की जाती है और असद्भाव स्थापना अतदाकार पदार्थ में की जाती है। जो पदार्थ वेदना से लगभग मिलता जुलता है उसमें वेदना इसी स्थापना करना सद्भाव स्थापना वेदना है, और जो पदार्थ वेदना से मिलता जुलता नहीं है उसमें वेदना इसी स्थापना करना असद्भाव स्थापना वेदना है। द्रव्य वेदना का निर्देश सुगम है। द्रव्य में हमने द्रव्य वेदना में हम आगम द्रव्य वेदना और नो आगम द्रव्य वेदना भेद करते थे। आगम द्रव्य वेदना तो आसान है ना, उसके प्रावृत को, वेदना प्रावृत को जानकर उसमें उपयोग रहित है। और नो आगम में हमने 3 भेद किए थे, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। तो उसमें जो नो आगम, यहाँ फिर भी नो आगम द्रव्य वेदना के तद व्यतिरिक्त के भेदों पर प्रकाश डालना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञायक शरीर और भावी तो आसान है, अब जो तद व्यतिरिक्त है उसके भेद बता रहे हैं यहाँ पर। इसके 2 भेद है, कर्म और नो कर्म। बंद समय से लेकर उदय के पूर्व तक के कर्म को कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य वेदना इस नाम से कहते हैं, क्योंकि ये जीवों के विविध अवस्थाओं व विविध प्रकार के परिणामों के होने में तथा शरीर वचन व मन के होने में भविष्य में निमित्त कारण होंगे। हम द्रव्य निक्षेप किसको लगाते हैं, वो भविष्य की पर्याय होगी उसको लगाते हैं। अब यहाँ ये जीव में कारणभूत होने वाले हैं, क्योंकि वेदना किसको कहा, जो कर्मों के उदय में जो जीव में कुछ बातें होती उसको यहाँ वेदना कहा था। तो ये जीव में निमित्त कब होगे, तो भविष्य में, कब से, बंद समय से लेकर उदय तक, क्योंकि वो जीव को कुछ उसका फल नहीं मिलता है, उसका निमित्त कब होता है, उदय में आने पर होता है, इसलिए तब तक उसको क्या कहेंगे, द्रव्य निक्षेप के से कहेंगे। हम ये कहते हैं ना कि ये तीर्थंकर का जीव है, ये उसको तीर्थंकर कह देते हैं, उसका उदय तो तैरवे में आने वाला है, पर अभी तीर्थंकर जन्म हुआ ये वहाँ, वो किस तरह से वो फल देने वाला है तीर्थंकर प्रकृति, तो उसको अभी वर्तमान में हम तद व्यतिरिक्त नवागम द्रव्य वेदना कह सकते हैं। तो इसलिए तद व्यतिरिक्त अवान्तर भेद रूप से द्रव्य कर्म कहे जाते हैं, यानी तद व्यतिरिक्त का एक भेद है ये उसको, तथा नो कर्म इस दूसरे भेद से इनके सहकारी कारण लिए जाते हैं। क्या कहा, वो कर्मों के सहकारी कारण कौन है, वहां प्रश्न आया था ना, वो स्त्री पुत्र वगैरह क्यों लिया था, तो स्त्री पुत्र धनादि भविष्य में कर्म के उदय में सहायक होते हैं, वे तद व्यतिरिक्त के दूसरे भेद नो कर्म हैं, इनका स्पष्ट उल्लेख कर्मकांड में किया है। देखो कर्मकांड में क्या बताया है, एक एक कर्म का नो कर्म बताया है, ज्ञानावरण के नो कर्म क्या है, दर्शनावरण के नो कर्म क्या है, वो सब एक एक के नो कर्म गिना है। नो कर्म का अर्थ क्या है, यहाँ कर्म के उदय में वो बाह्य निमित्त पाए जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ऐसा हम कहते हैं, अभी ज्ञान की हीनता हुई तो उस जीव को एनेस्थीसिया दिया, मॉर्फिन दिया, कोई इंजेक्शन लगाया, उसको बेहोश हो गया, तो उसको पता नहीं चला ऑपरेशन हुआ, तो उसका ज्ञान हीन हुआ ना इंजेक्शन के कारण, तो कहते हैं ज्ञानावरण वहाँ वैसा हुआ था, उसका क्षोक्षम इतना घट गया था, और उसके लिए ये बाह्य निमित्त क्या था, वो इंजेक्शन का, तो उस कर्म का वो नो कर्म है, मेरी भाषा में कर्म का एजेंट है वो बाहर, जिसके हम उसके फल से ये हुआ ऐसा लगता है बाहर में, है तो कर्म का निमित्त, वो निमित्त तो हमें तो दिखाई नहीं देता, हमें तो उसका और जो बाह्य निमित्त है, कर्म के उदय में भी जो बाह्य कोई सहकार निमित्त है, उसको यहाँ कर्म का नो कर्म कहते हैं। जैसे साता वेदनी का उदय है, परंतु वहाँ लक्ष्य किसका किया, कुछ अनुकूल सामग्री का लक्ष्य किया, तो वो कर्म का नो कर्म हो जाता है। जैसे यहाँ जीव के क्रोध परिणाम हुआ, तो क्रोध परिणाम हुआ तो बाह्य में कोई चीज दिखी उसको, या कोई किसी ने झगड़ा किया, बच्चों ने नहीं माना, जो कुछ है, तो वो क्रोध कर्म का वो बाह्य निमित्त हुआ, यानी पुत्र ने कुछ गलत की, उसको देखकर हमको क्रोध आया, तो ये पुत्र क्या हुआ, नो कर्म हुआ, वो वेदना का नो कर्म तद व्यतिरिक्त में, इसका स्पष्ट उल्लेख कर्मकांड में तो बिल्कुल एक एक कर्म का नो कर्म बताया गया है। भाव वेदना में ये भाव निक्षेप यहाँ से लगाते हैं, दूसरा भेद वो उसका पहला भेद जो आगम भाव वेदना, वो तो आसान है, क्योंकि वेदना प्रावृत को जानकर उसी में उपयुक्त जीव लेना है, यहाँ जो आसान नहीं है उसको समझाते हैं, विशेषार्थ नहीं है। तो भाव वेदना में दूसरा भेद नो आगम भाव वेदना का, जो अजीव भाव वेदना है उनके दो भेद हैं, क्योंकि उनमें भी जीव भाव वेदना की थी, उसके जीव के पांच भाव बताए थे, अब यहाँ अजीव के बाद बता रहे हैं, क्योंकि वो जीव का समझना तो डायरेक्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया ही था, इसलिए अजीव को समझा रहे हैं। उसके दो भेद है औदयिक और पारिणामिक, जो इनमें से औदयिक भेद द्वारा पुद्गल विपाकी कर्मों के उदय से जो रूप रसादि रूप परिणमन होता है वह लिया गया है। अच्छा, क्योंकि वेदना कहने से वो कर्म के उदय में जो यहाँ जो शरीर वगैरह में जो परिणमन हो रहा है उसको लिया, और पारिणामिक भेद द्वारा शेष पुद्गलों का रूप रसादि परिणमन लिया गया है, यह उक्त अर्थ कथन का तात्पर्य है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, औदय कहा उसमें भी पुद्गल कर्मों के उदय से, यानी जिसको हम पुद्गल विपाक की कर्म कहते हैं, हाँ, तो पुद्गल विपाक की कर्मों के उदय में जो जो बातें बनती है उसको औदयिक कहा। उन स्कंदों के जो कुछ स्पर्श रस गंध वर्ण आदि में जो कोई बातें होती है उसको औदयिक कहा, और उनके उदय के बिना अन्य जो पुद्गलों का रूप रसादि परिणमन है उसको पारिणामिक कहा। ये यहाँ स्पष्ट रूप से लिया है, पुद्गलों में औदयिक कैसा लेना, यानी उनको अपने स्वभाव से उनके रूप रस गंध वर्ण परिणमित हो रहे हैं, यानी उन कर्मों का उदय निमित्त नहीं है, बस इतना ही लेना। हाँ, अभी जैसे हमने वो दाल थी और हमने पकाई, अभी उसमें जो परिणमन हुआ वो किसी कर्म के निमित्त से नहीं हुआ है, परंतु यह शरीर में जो कोई वर्ण है वगैरह वो तो जीव विपाकी कर्मों के उदय से होता है, उसको लेना। मैंने पुद्गल विपाकी कर्मों के उदय में जो स्कंधों का परिणमन होता है क्योंकि पुद्गलों में भी औदयिक भाव जो घटित करते हैं वो इस रूप से के उदय के बिना उदय कैसे कहेंगे उसको, तो ये पुद्गल विपाकी कर्मों का उदय लेना, यहां लिखा ना पुद्गल कर्मों के उदय से जो रूप रसादी परिणमन होता है। हाँ, कर्मों का निमित्त है उसको पुद्गल में औदयिक भाव का, अजीव का औदयिक भाव लिया ना। मुझे अब तक लग रहा था कि जीव के निमित्त से उसमें होता है उसका औदयिक, अपन वो नहीं लिया उन्होंने। इस प्रकार वेदना निक्षेप अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। ये निक्षेप में हमने द्रव्य क्षेत्र नहीं लिया, नाम स्थापना द्रव्य और भाव दो ही चार ही देखे। अब ये यहां से वेदना नए विभाषणता शुरू होते, ये दूसरा जो अधिकार है उसमें फिर एक दो तीन चार सूत्र अलग से बताएंगे। वेयना नय विभाषण दाये कौन अवो कावो वेदना वो इच्छति। अब वेदना नय विभाषणता का अधिकार है, कौन नए किन वेदनाओं को स्वीकार करता है, यानी हमने देखा था इतने अभी हमने वेदना के भेद देखे उसके निक्षेप लगाए हैं, तो कौन से नए में कौन सा स्वीकार है, यानी कौन से नए का कौन सा विषय है वो बताएंगे। यहाँ नीचे लिखा है ना वेदना नए विषाण अधिकार है, कौन नए किन वेदनाओं को स्वीकार करता है। वेदना नए विभाषणता यह अधिकार का स्मरण करने वाला वचन है। कौन नए स्वीकार करता है यह पृच्छा सूत्र नहीं है किंतु चालना सूत्र है, वह चालना जानकर करना चाहिए। चालना यानी वो तो एक एक नए का क्या क्या विषय है बस इतनी। चालना का अर्थ सब्जेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं, अभी हम ये कल से ही ले लेते हैं। 10 नंबर के पृष्ठ पर आए हैं हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं